ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विकसित देशों में भी जनसंख्या वृद्धि दर का कम होता जाना चिंता का विषय है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक सुनील पौडेल सहित 6 लोगों के खिलाफ 15,88,00,000 रूपये से अधिक के भ्रष्टाचार के मामले में विशेष अदालत में दर्ज हुआ मुकदमा। और आगामी 1 अगस्त से कनाडा से आयात होने वाले सामानों में 35% कर लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विकास की परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने से जनता को भुगतनी पड़ रही समस्या के हालात को बदलने का निर्देश किया है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में हुई राष्ट्रीय विकास समस्या समाधान समिति की 54वीं बैठक में समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ओली ने ऐसा निर्देश किया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के विकास केंद्रित होकर कदम उठाने के बावजूद काम अपेक्षित गति से न हो पाने के पीछे की समस्याओं को पहचानकर स्पष्ट कार्ययोजना के साथ काम करें। प्रधानमंत्री ने काम के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए चुस्ती के साथ काम करने की शैली अपनाने का निर्देश भी किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि विकास और समृद्धि के बावजूद जनसंख्या वृद्धि का स्थिर न होना चिंता का विषय है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2082 के सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मानव के लिए विकास और समृद्धि आवश्यक है, लेकिन विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर का नकारात्मक होना मानव अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर रहा है, जिससे चिंता बढ़ गई है। उन्होंने इस ओर समय रहते सचेत होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि 20 साल के बाद ही शादी करने की कानूनी व्यवस्था के तहत समय पर शादी करके 30 की उम्र तक में 3 बच्चे पैदा करने का आग्रह किया। बता दें कि आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। जनसंख्या संबंधी चुनौतियों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1989 से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 8.2 अरब से अधिक हो चुकी है। ये दिवस सतत विकास, संसाधनों तक समान पहुंच, प्रजनन अधिकार और लैंगिक समानता के महत्व को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में ज्येष्ठ नागरिकों के जीवन को सुरक्षित, स्तरीय और सम्मानित बनाने के लिए अतिरिक्त विशेष व्यवस्था संबंधी जरूरी सार्वजनिक महत्व वाले प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। विमर्श के बाद सभा की अध्यक्षता कर रही राष्ट्रीय सभा की उपाध्यक्ष विमला घिमिरे ने प्रस्ताव में उल्लिखित विषयों के प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करने का नेपाल सरकार को निर्देश किया। प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता द्वितीय संशोधन विधेयक 2081 पर विचार करने के प्रस्ताव को राष्ट्रीय सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में गृहमंत्री रमेश लेखक ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इससे पूर्व बैठक में सांसदों ने बाढ़ व भूस्खलन से देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे नुकसान, मध्य प्रदेश में बारिश न होने से बने अकाल के हालात लगातार समसामयिक विषयों में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। प्रतिनिधि सभा की उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति की आज हुई बैठक में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के छात्रावास में शुद्ध पेयजल की कमी और स्वच्छता की समस्या पर चर्चा हुई। बैठक में त्रिभुवन विश्वविद्यालय कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉ अकलदेव मिश्र ने बताया कि छात्रावास में स्वच्छता और शुद्ध पानी की कमी की जानकारी सामने आने के बाद सुधारात्मक कार्य किए गए हैं। सांसदों ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के छात्रावास की दयनीय स्थिति पर चिंता जताते हुए तत्काल सुधार की मांग की। सांसदों ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को सभी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सरकार युवा और महिला उद्यमियों को मिलकर देश की समृद्धि के लिए काम करने की जरूरत है। महिला उद्यमी महासंघ द्वारा आज ललितपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला नेतृत्व सम्मेलन 2082 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए संविधान के प्रावधान व्यवहार में धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम को
भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुनील पोडेल सहित 6 व्यक्तियों के खिलाफ 15 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में विशेष अदालत में मुकदमा दायर किया है। आयोग के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार पोडेल ने बताया कि पूर्व कार्यकारी निदेशक सुनील पोडेल के अलावा पूर्व निदेशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निदेशक रमेश पोखरेल और कंप्यूटर इंजीनियर रामशरण गया के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के पूर्व लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेपाल प्राली कांतिपथ काठमांडू और कंपनी के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अरुण श्रेष्ठ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपियों ने नेपाल सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से निम्न गुणवत्ता वाले प्रोसेसर और स्टोरेज उपकरणों की आपूर्ति की थी। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा इटली के रोम में आयोजित खाद्य तथा कृषि संगठन FAO के 44वें अधिवेशन और इसी क्रम में आयोजित उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय कॉन्फ्रेंस में सहभागी होकर आज स्वदेश लौटी हैं। मंत्री राणा 28 जून से 4 जुलाई तक आयोजित FAO कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सत्र के साथ ही अन्य उच्चस्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों को संबोधित किया था। ऊपरी जलाधार क्षेत्र में हिमताल के फूटने के कारण मंगलवार को रसुआ में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। पहले 9 लोगों की मौत होने की सूचना थी, लेकिन त्रिशूली नदी के निचले तटीय क्षेत्र में 2 और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या 11 हो गई है। ये जानकारी नेपाल पुलिस के केंद्रीय प्रवक्ता और DIG विनोद खिमरे ने दी। नेपाल पुलिस मुख्यालय के अनुसार अभी भी 19 लोग लापता हैं। केंद्रीय प्रवक्ता घिमरे ने बताया कि अब तक बाढ़ में फंसे, अलग थलग पड़े और सड़क अवरुद्ध होने के कारण रुके हुए कुल 862 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। बाढ़ ने नेपाल चीन सीमा क्षेत्र स्थित मितेरी पुल को बहा दिया है, साथ ही 24 कंटेनर, 6 ट्रक और 42 EV गाड़ियां भी बह गई हैं। इसके अलावा बाढ़ से रसुआगढ़ी हाइड्रो पावर के डैम, सीमा शुल्क कार्यालय के यार्ड को नुकसान पहुंचा है। वहीं धुंचे से चिमुरे जाने वाली सड़क को भी भारी क्षति हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से अमेरिका में आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ अमेरिका में आने वाले कनाडा के सामानों पर 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की घोषणा सोशल मीडिया पर एक पत्र पोस्ट करके की है। अमेरिका इससे पहले कनाडा के कुछ सामानों पर 25% टैरिफ लगा चुका है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित देशों में भी जनसंख्या वृद्धि दर का कम होता जाना चिंता का विषय है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक सुनील पोडेल सहित 6 लोगों के खिलाफ 15 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के मामले में विशेष अदालत में दर्ज हुआ मुकदमा और आगामी 1 अगस्त से कनाडा से आयात होने वाले सामानों में 35% कर लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।